जयो राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यशोद नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन जारी यमुना तीरा बन जारी जायो राधा माधव कुंज विहारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन जारी यमुना तीरा बन जारी जयो राधा कुंजिहारी जयो राधा कुंजिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Maya Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vishnubhad Paramahamsa Parivraj Kacharya Stotra Rishat His Divine Grace Abhay Charanar Vindu Bhakti Vedan Swami Shla Prabhupada Ki Jaya Anant Koti Vaishnavrindi Ki Jaya Namachara Shla Haridas Thakur Ki Jaya Prem Sukaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindi Ki Jaya Shri Radha Krishna Gop Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai Kali Yuga Pavana Hari Naam Sankirtan Ki Jai Gaur Premanande All Glories to the Assembled Devotees All Glories to the Assembled Devotees All Glories to the Assembled Devotees All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vikantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Nami Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharile Nirvishesha Shunyavadi Paschatta Deshakari Vancha Kalpataru Vishchakripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna सबका स्वागत है. जो प्रसंग है कुंती और पांडु द्वारा देवताओं को आह्वान करना और उनसे पुत्र प्राप्त कर लेना, ये भी एक विवादास्पद प्रसंग है. अलग अलग देवताओं को बुलाकर पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, फिर से वही हम लोग इंट्रोडक्शन जा सकते हैं कि हर एक वातावरण को दुर्भाग्यवश हम इतिहास को हमारे वातावरण के अनुसार परीक्षा करने का प्रयास करते हैं। अलग देश का, अलग काल का, अलग समय का अपना वातावरण होता है, उस वातावरण के द्वारा देखने से ही हमें जो प्रसंग है वो समझ में आएगा। तो यहां उस समय किसको महत्व दिया जाता था, उदाहरण के लिए कथा, सत्य कथा है, ये दक्षिण भारत में हुआ था। एक किसी आईएएस ऑफिसर, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो उनका पुत्र डॉक्टर बनना चाहता था। तो डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन उच्च वर्णीय होने के कारण उसके पास इतने मार्क्स नहीं थे, और इतने मार्क्स न होने के कारण उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर होने के कारण जानते थे नियम क्या है। उन्होंने कहा, मैं एक सर्टिफिकेट दूंगा और तुम अपने आप को जो कम वर्णीय या SC/ST कास्ट के करके ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करो, ताकि आपको सीट मिल जाएगा। उनको सीट मिल गया, फिर वो डॉक्टर बन गए, फिर उन्होंने PG की, फिर वो प्रैक्टिस चालू कर दिया। और जब उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से चल रहा था तब किसी न किसी प्रकार से समाचार लीक हो गया, सबके समझ में आ गया कि असली में ये उच्च वर्णीय है, परंतु उसने एक जो SC/ST कैटेगरी के सीट को खराब कर दिया और डॉक्टर बन गया, तो उसके प्रति कोर्ट केस हो गया। वो कोर्ट केस होने के कारण उसको सिद्ध करना था, एक तो उसका सर्टिफिकेट सरकार छीन लेती, या उसको सिद्ध करना था कि वो SC/ST का है। अब क्या करना है, समस्या खड़ी हो गई। डॉक्टर तो बन गया है, प्रैक्टिस भी चालू है, तो उसने उसके पिता के ही इच्छा से, पिताजी थे, उनकी माता थी, वो खुद थे सबके सामने, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था, टेलीविजन में, सब जगह में आया था, इसलिए ये समाचार प्रज्वलित लोगों को अच्छा ही लगता है। तो सबके सामने खड़े होकर उसने ऐसा कहा कि मेरी मां किसी एक शूद्र के साथ संभोग करके मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं शूद्री हूं। तो जो उसके विरुद्ध जो आक्षेपण कर रहे थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण है, वो हार गए, इसकी जीत हो गई, क्योंकि उसने साफ साफ सबके सामने बोल दिया और माता ने भी स्वीकार कर दिया। असल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अपने सीट को बचाने के लिए डॉक्टर बनने की अभिलाषा थी, डॉक्टर बन गया किसी न किसी प्रकार से। अब उसका सर्टिफिकेट जाने वाला था, ऐसे सरकार के सामने, कोर्ट के सामने उन्होंने फिरियाद प्रदर्शन कर दी और वो जीत गया। तो यहां अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, कोई सकता है कितना घटिया एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कर रहा है, अपने मां को वेश्या बना रहा है, एक दृष्टिकोण हो सकता है। और दूसरा दृष्टिकोण है, ऐसा उसको किसने किया है, सरकार ने ही किया है, उसके अंदर योग्यता थी डॉक्टर बनने की, लेकिन ऐसे सिस्टम के कारण उसको झूठ बना दिया। यानी कि महत्व किसको है कलयुग में, किसी न किसी प्रकार से पैसा विद्या कमाओ, कैसे कमाओगे उसके लिए महत्व नहीं दिया जाता। एक बड़े उद्योगपति, मैंने सुना उनको, वो बोल रहे थे, उनको कुछ बोलने के लिए कहा, उन्होंने कहा मैं जब मेरा बिजनेस प्रारंभ किया, उद्योग चालू किया, तब मेरे मन में सीधा विचार था, क्लियर थिंकिंग, वो क्या था, किसी न किसी प्रकार से मेक मनी हवेवर, किसी न किसी प्रकार से पैसा बनाओ। तो जब एक सिद्धांत होता है, कोई प्रिंसिपल होती है, अगर वो केंद्र बिंदु है, अगर विद्या जीवन का केंद्र है तो उस विद्या प्राप्त करने के लिए लोग विवश होकर कुछ न कुछ कर बैठते हैं। पैसा कमाना हो तो कुछ न कुछ कर बैठते हैं। तो वैसे अगर आप पीछे चले जाओगे 5000 साल पहले, एक महत्वपूर्ण कारण के लिए लोग पुत्र की अपेक्षा करते थे। पुत्र पुत्र पुत्र, क्यों? यहां पांडु महाराज कुंती को कहना कि मैं संतानहीन होकर मर जाऊंगा, तो संतानहीन मरने के पाप को हटाने के लिए मुझे किसी न किसी प्रकार से पुत्र प्राप्ति करनी है, और इसलिए आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ। हमने कल नियोग पद्धति के बारे में चर्चा की, और उसके द्वारा पुत्र प्राप्ति कर लो। क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी शास्त्र में लिखा है। तो स्वयं पांडु कह रहे हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि वो कहते हैं कि देख, चार प्रकार के ऋण होते हैं, इसको चुकाना है। अगर आप उनके भावनाओं को जानोगे क्यों ऐसा करना चाहते हैं, तो समझ में आएगा। आज विद्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसके द्वारा कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सोच क्या, मुझे ऋण से मुक्त होना है, ऋण चुकाना है। जब तक दूसरों का ऋण नहीं चुकाओगे, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड, जिसे इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड कहते हैं, जिसको कृतज्ञता कहते हैं, कृतज्ञता यानी कि कृतज्ञ, कृत कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतअज्ञ। कृत यानी कि कार्य, अज्ञ यानी कि उसको भूल जाना। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है, जब उस चीज को हम भूल जाते हैं, फिर हम कृतघ्न बन जाते हैं, इनग्रेटिट्यूड। और कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी कि नियमित रूप से चिंतन करते रहना, अरे इसने मेरे जीवन में कुछ किया है, इसने मेरे प्रति इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा उपकार किया, उसके प्रति चिंतन करते रहना। भागवतम के प्रथम स्कंध में उदाहरण बताया जाता है, बुद्धि का एक लक्षण, बुद्धि का एक लक्षण क्या है? कृतज्ञता। बुद्धि का लक्षण यानी कि केवल रिटेंशन नहीं, किसी इंफॉर्मेशन को फिर से रिपीट करना ही नहीं, ये भी है, लेकिन बुद्धि का एक लक्षण ही है जो अपने पूर्वजों से कुछ प्राप्त किया है उसके बारे में हमेशा के लिए उपकार मानना, इसको कहते हैं कृतज्ञता। ये बुद्धि का लक्षण है, जिसको ऐसी भावना है वो बुद्धिमान है, ये भागवत के प्रथम स्कंद में। और कृतघ्न, घ्न यानी कि तोड़ना, काटना, मारना, तोड़ देना उसे। इंद्र जिस समय दुर्वास मुनि ने उनको फूल की माला दी, और वो फूल की माला इंद्र ने क्या कर दिया, अपने ऐरावत के गले में डाल दिया। अब ऐरावत तो हाथी है, स्वर्ग का हो या भूमि का हो, हाथी तो हाथी है। तो हाथी ने क्या कर दिया, दुर्वास के सामने उस माला को कुचल डाला। इसको कहते हैं कृतघ्न, कोई कुछ आपको दे रहा है उसको तोड़ डालना। जैसे हम लोग एक बार नासिक में थे और पुस्तक वितरण कर रहे थे, हमारा बस था, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, प्रभुपाद और गौर निथाय। तो एक भिखारी है हमारे गाड़ी के सामने, उसके पैर नहीं थे, वो जो अपने आप को खींच कर आते है वैसा आया, और उसको मैंने खुद कई भक्तों की मदद से घी में हलवा बनाया था, शुद्ध घी में हलवा बनाया और उसके हाथ में दिया, और उसने देखा, जगन्नाथ जी को देख रहा था, प्रभुपाद जी के विग्रहों को देख रहा था, भक्तों को देख रहा था, हरे कृष्ण कीर्तन चालू था। उसने उस प्रसाद को लिया, देखा, फेंका जोर से और ऊपर उसके ऊपर से अपने गाड़ी चलाकर चला गए। ऐसे भी जीव है। और एक बार और एक अन्य जगह में एक वृद्ध आए गाड़ी के सामने, और उनको एक भक्त पहचानते थे, वो चर्चा करने लगे। उसने वो वृद्ध ने पूछा इस भक्त को, आपके पिताजी कैसे? उन्होंने कहा पिताजी गुजर गए। ओ गुजर गए, तो ये भक्त थोड़ी गलती कर ली उत्साह में, आपका भी समय आ गया, आप वृद्ध हो, आपको हरिनाम करना चाहिए। तो उसको इतना गुस्सा आ गया, मैं कभी नहीं करूंगा। उसको लगा हरिनाम करने वाले जल्दी मर जाते, हो सकता है ऐसी भावना होगी इसकी, बोला मैं कभी नहीं करूंगा, नहीं नहीं करना चाहिए, अच्छा है। तो ये भक्त कभी कभी होशियारी दिखाते, बोला क्या नहीं करोगे? वो जान गए कि ये पूछना चाहता है मैं हरिनाम नहीं करूंगा। बोला मैं जानता हूं तू मेरे से ये नाम बुलवाएगा, वो भी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं सामने देख रहा हूं। बड़े गुस्से से वो निकल गए। देखो कि जीव कितना अहंकारी हो सकता है, इसलिए शास्त्र में कहा है कि सबसे बड़ा चोर कौन है, चोरी क्या है, सबसे बड़ी चोरी क्या है? सबसे बड़ी चोरी यह है, ठीक है किसी के गार्डन में जाकर फूल चोरी करना ये चोरी है, किसी का जाकर वृक्ष चोरी करना, यहां बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चालू है ऐसा हो सकता है, या किसी का रेती चोरी करना, आश्रम में किसी का कोपिन चोरी हो जाता है, ब्रह्मचारी चोरी करते हैं, किसी का चप्पल चोरी हो जाता है, ये चोरी है। और इसके लिए प्रायश्चित भी है, परंतु वेदों में ऐसा कहा गया है सबसे बड़ी चोरी कौन सी है, ये आत्मा भगवान का है, भगवान से आया हुआ है, उनकी शक्ति है, वही उसके स्रोत है, और इस आत्मा को उनसे हटा लेकर इसको भगवान के विपरीत कार्यों में लगाना ये सबसे बड़ी चोरी है। और इसके लिए प्रायश्चित क्या है, इसके लिए प्रायश्चित ही है भक्ति करना। अलग अलग योनि में हम जाते रहते हैं, कृष्ण को भूलकर, भगवान को भूलकर, तो सबसे बड़ी चोरी है। इसलिए अगर उस वातावरण में जाओगे, आजकल पुत्र मांगते नहीं है, आजकल पुत्र आ जाए तो उसको गर्भपात कर देते, शतपुत्र भव, शतपुत्र भव, अगर किसी को आप अगर आशीर्वाद दोगे उनको लगे शाप दे रहा है, हमको एक से भारी पड़ रहा है, एक लेकर वो कितना कठिनाई है। इसलिए कभी कभी माता पिता कहते अरे बच्चे ही नहीं चाहिए, हमने हमने देखा है, देखो कितने लोगों को कितना कष्ट हो रहा है कि बच्चे ही नहीं चाहिए, यानी कि जो संस्कृति बदल जाती है, जो वर है वो शाप बन जाता है। तो इसलिए यहां अगर पांडु महाराज के दृष्टिकोण से देखोगे, उनको सबसे बड़ा जो बोझा क्या था कि ऋण चुकाना है, ऋण चुकाना है, ऋण चुकाना है, कृतज्ञता को व्यक्त करना है, अगर इतना भी जान जाएंगे फिर आगे कहने की आगे कहने का कोई आवश्यकता नहीं होती। ऋण, ऋण के दृष्टिकोण से, क्योंकि पांडु राजा थे, राजा होने के कारण हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ सुविधाएं होती है, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे जन्म के साथ हमारे लिए कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ फैसिलिटीज मिलते हैं, वो फैसिलिटी किसके लिए है, हमारे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, वी हैव रिसोर्सेस टू फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जानना चाहिए। हमें कुछ सुविधाएं मिलती है, वो किसके लिए मिलती है, उसको उड़ाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए। राइट्स आर देयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। कलयुग का लक्षण क्या है, कलयुग का लक्षण यही है, लोग केवल अपने राइट्स को मांगते हैं, वी वॉन्ट अवर राइट्स, वी वॉन्ट अवर राइट्स। विद्यार्थीगण राइट्स मांगते हैं, कर्मचारी लोग राइट्स मांगते हैं, स्त्री अपने राइट्स मांगती है, पुरुष अपने राइट्स को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने जो सुविधाएं है उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कोई भी अपने उत्तरदायित्व के बारे में नहीं सोचते, या हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए अर्जुन जब युद्ध करने से मना कर रहे थे, जब कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, दो प्रकार से संबोधित किया, हे अर्जुन तुम कौंतेय हो, और तुम भारत भी हो। कौंतेय ने कि आपका जो मां के साथ जो संबंध है, जो परिवार है, इतने महान परिवार से आए हो और पिता के रूप से भरत कुल के हो, इतना सुविधा आपको प्राप्त हुई है, आपका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे दूर नहीं हट सकते हो। जितना ऊंचा पोजीशन उतना ज्यादा उत्तरदायित्व है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए राइट्स आर देयर फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल। सुविधाएं है उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए। अगर सुविधा आती है तो रिस्क आ जाता है। कौन सा रिस्क? कि उसको हम गलत प्रकार से उपयोग करेंगे। अगर किसी के पास सुविधा आती नहीं है, वो अपने आप को कोस सकता है, या उसको सुविधा प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर या अवकाश नहीं हो, उसके लिए कोस सकता है। लेकिन जिसके पास सुविधाएं है, उत्तरदायित्व को नहीं जानता, वो निश्चित है उसको क्या करेगा, स्क्वांडर करेगा, उसको खराब कर देगा। इसलिए आप देखते हो जो बड़े बड़े शहरों में निवास करते हैं, बड़े घराने के घर बच्चे लोग रहते हैं, उनको मंदिर में बैठा और उनको खाने दो, खाने के लिए दो, खाना नहीं आता उनको, एक रोटी एक हाथ से तोड़ नहीं सकते, दोनों हाथ लगाएंगे तोड़ने के लिए। खाना भी, ये जो भोजन स्वीकार करना, एक भी कला है, जानवर जैसे नहीं खाना चाहिए। जब खाते हैं, खाना किस प्रकार से खाना चाहिए ये भी सिखाया जाता था। दोनों हाथ से खाते हैं, अगर उनको स्पून नहीं दिया जाए तो खा नहीं सकते। गांव में, यानी कि जहां संस्कार है, वहां खाने की कला होती है, उसको ठीक से खा सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते, दे कांट ईट प्रॉपरली ऑल्सो। यानी कि क्या सुविधा मिली हुई है लेकिन उसका ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए पांडु महाराज की इच्छा थी, अरे मुझे पुत्र चाहिए। क्यों पुत्र चाहिए? क्योंकि ऋण है, चार प्रकार के ऋण है, उसको चुकाना है। एक ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण किस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं हम लोग? ऋषि ऋण द्रौपदी जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ये शास्त्र अध्ययन करना ही है, स्वाध्याय करना ही है। कोई प्रश्न करेगा, अरे मुझे क्या मालूम है पाप करके, मैं नहीं जानता हूं। अज्ञान अगर है किसी चीज के बारे में, ये नहीं करना है वो करना है, तो अज्ञानी ही दोषी रहेगा। जिसने नियम बनाया वो दोषी नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने नियम बनाया है उसने नियमों को हमारे सामने प्रस्तुत भी किया, इसको जानो। ऐसे लोकल ट्रेन में मुंबई में लोग आते हैं बाहर से, उनको क्या लगता है जो खाली बोगी है उधर जाने का, खाली बोगी क्या होता है? फर्स्ट क्लास का होता है, सेकंड क्लास में खाली नहीं होता है, रिलेटिवली खाली होता है, वो भी खाली नहीं होता। तो क्या करते हो, टिकट लेते हैं सेकंड क्लास का और घुसते हैं फर्स्ट क्लास बोगी में, फिर फाइन भरते हैं डबल फर्स्ट क्लास से भी। तब वो बोलते हैं, अरे हमें जानकारी नहीं थी, ये मेरी गलती नहीं है। नहीं, टीसी क्या कहेगा, नियम को जानना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि हमने नियम बनाया है और नियम जानने के लिए कुछ सुविधाएं भी दी है। तो अज्ञानी है वो भी उतना ही क्रिमिनल है जितना ज्ञानी क्रिमिनल है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया, इसलिए ऋण है। ऋषि ऋण क्या है? शास्त्र को अध्ययन करना। अरे मुझे किसी ने सिखाया नहीं, वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपको जानना चाहिए, ये ऋषि ऋण हो गया। और दूसरा है देव ऋण। देव ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तपस्या करने से। भोगवाद जो है ये मनुष्य स्वभाव नहीं है, ये बद्ध जीवों का स्वभाव है। तपस्या करना, किसी भी वस्तु के लिए तपस्या करना ये स्वाभाविक है, लेकिन देवों को प्रसन्न करने, तो उनके ऋण से मुक्त करने के लिए एक नियम का पालन करना होता है जीवन में। और जब उस नियमों को पालन करते हैं वो तपस्या बन जाता है, और तपस्या के द्वारा देवतागण हमारे हमने जो उनको ऋण से अरुण बन जाते हैं, दूसरा हो गया। और तीसरा है मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण क्या है? मनुष्य ऋण यज्ञ के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। यज्ञ यानी कि समर्पण। हम समाज में हर एक के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। आज का जो समाज है वो आई एंड मी समाज है, आई जनरेशन। आई जनरेशन यानी कि मेरा और मैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। लोगों को लगता है कि दूसरे लोग है वो मेरे लिए बोझा है। अगर माता पिता वृद्ध बन जाते हैं, कमाते नहीं है, तो क्या हो गया? वो मेरा खर्चा कर रहे हैं। देखो, देखने की वृत्ति बदल जाती है। ऐसा नहीं कि सेवा का अवसर मिल रहा है। एक देश में किसी मंत्री से उनके प्रधानमंत्री ने पूछा कि हमारे देश में आबादी बढ़ गई है, लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो कैसे इसको रोक सकते हैं और कैसे समाज में एक समानता लेकर आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि देखो, 60 लाख लोग अगर मार देंगे तो सबको ठीक से खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सोने के लिए मिलेगा, जगह मिल जाएगा। वो किससे कैलकुलेट करते हैं? संख्याओं से कैलकुलेट करते कि दीज आर टू मेनी पीपल, ज्यादा इनको मार दो। वृद्ध, अंधे, बूढ़े और नपुंसक, जिनको देखने में नहीं आता, बहरे, ये समाज के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता उसको क्या करो? उसको निकाल दो। He should be wiped out. तो जब लोग हमारे लिए बोझा बन जाते हैं, ये नहीं समझने के रहे सेवा का अवसर है, तब समाज क्या होता है? बहुत क्रूरी बन जाता है। इसलिए मनुष्य ऋण यानी कि यज्ञ, यज्ञ यानी कि समर्पण की भावना। तो इसलिए जब हाल ही में किसी स्टेट में, कर्नाटक में, गो हत्या के प्रति निषेध लगा दिया गया, और कोई भी गो हत्या करेगा 7 साल के लिए सजा, तो कई नेताओं ने कहा अरे ये तो बहुत बेकार है, कितने सारे गरीब किसान हैं, वो कैसे गाय की सेवा करेंगे, इसे चिकन का भाव बढ़ जाएगा, मटन का भाव बढ़ जाएगा। देखो किस प्रकार से सोचते हैं। अरे गाय को मारना इकोनॉमिकली हमें लाभदायक है, तो फिर मां को भी मार दो, पिता को भी मार दो, जो भी कुछ काम नहीं करता उसको मार दो। ये प्रॉफिट एंड लॉस, जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस देखने की वृत्ति है, ये वैदिक वृत्ति नहीं है। वैदिक वृत्ति क्या है? कि समर्पण। समर्पण कैसे? कि ये लोग अब अपने आप का देखभाल नहीं कर सकते, ये मेरा कर्तव्य है कि इनका देखभाल करना। तो वैसे करने से क्या होगा? मुझे दीन दलितों का सेवा करने का अवसर मिलेगा, वो मेरा प्रॉफिट है। और जो सेवा ले रहा है उसको क्या होगा? कृतज्ञता की भावना बढ़ जाएगी। दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट ये नहीं है कि यहां लॉस हो गया, यहां प्रॉफिट हो गया। अगर इसको जीवित रहो, जीवित रखो तो यहां लॉस हो जाएगा, अगर इसको मार दू, इसको जीवित रखो तो लॉस हो जाएगा, अगर मार दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस, सब कुछ कैलकुलेटिव बुद्धि से। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण क्या है? कृतज्ञता की भावना बढ़ जाएगी, सेवा का अवसर मिल जाएगा। यानी कि केवल गुण गुण गुणों के बारे में चर्चा की जाती है, मटेरियल कैलकुलेशन नहीं। तो इसलिए स्वाभाविक है, अगर मनुष्य ऋण से मुक्त होना हो, ऐसे लोग रहेंगे, रहना चाहिए। हम इसके पहले एक बार बताए थे, हम हमारे महाराज जी की सेवा करने हेतु, उनका सर्जरी हुआ था, हम लोग लंदन में थे और उनके लिए कुकिंग करते थे हम लोग। उस घर में जहां हम लोग निवास करते थे सेंट्रल लंदन में, वो घर में जो उनका जो सिंक था, जहां सब बर्तन साफ करते हो, पानी बहने के लिए डालते हो, वहां सिंक में एक क्रेटर बिठाया था, जैसे मिक्सी में होता है ना, वैसा बिठाया था। तो हमने पूछा इसका क्या लाभ है, इसमें क्यों बिठा है? इधर तो हम लोग मिक्सी में कुछ सब्जी या मसाला तो मिक्स नहीं कर पाएंगे, ये किसके लिए बिठा है? तो उन्होंने कहा देखो, यहां अगर आपका कुछ खाना बच गया, आप अगर नहीं खाना चाहते हो, एक तो फ्रिज में रखो, अगर फ्रिज में नहीं रखते हो तो एक क्रेटर में डालो और मशीन चालू करो, तो आपका दाल चावल सब्जी स्वीट क्या होगा, क्रश होके पानी पानी बन जाएगा और गटर में चला जाएगा। क्योंकि जहां जिसको देना चाहते हो ऐसे लोग है नहीं, इधर सबके पास पैसा है, यहां भिखारी कोई नहीं है। तो हम सोचेंगे वाह कितना अच्छा देश है, भिखारी नहीं। परंतु भिखारी न होने के कारण क्या होगा, कितना सारा खाना वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है, जहां समानता है वहां सेवा नहीं है, जहां सब इक्वल बन जाते हैं समाज में, सब लोग समान रह जाते हैं, सब धनिक एवरीबॉडी रिच, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी कृत्रिम रूप से जब बनाएंगे इसको, तब समाज में क्या हो जाता है, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है ये ऐसे गुणों को स्थापित कर देता है कि मैं किसी के लिए नहीं हूं, कोई मेरे लिए नहीं है। इसलिए समाज में ऐसा होना, राजा यानी कि प्रजा होंगे, धनिक यानी कि गरीब होगा, उच्च यानी कि नीच होंगे, शोषण करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए। इसलिए मनुष्य ऋण जो है ये यज्ञ के रूप में पूरा हो जाता है। यज्ञ यानी कि मेरे पास जो कुछ भी है उसको समर्पण के रूप में अर्पण करना। इससे हम मुक्त नहीं हो सकते, इससे मुक्त नहीं होना चाहिए। इससे मुक्त होने से क्या होगा, समाज राक्षसों का समाज बन जाएगा। ऐसे फेंको, जैसे एक हमारे जो कृषि केंद्र चला रहे सनत कुमार प्रभु, उन्होंने काफी मटेरियल्स इकट्ठा किया है किस प्रकार से समाज सोचता है आजकल का। दक्षिण अमेरिका में आपके घर के सामने से नदी बहती होगी लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा, क्यों, वो पानी अब किसी प्राइवेट कंपनी के ओनरशिप में, पानी को उसने क्या कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो अगर आपको पानी लेना है तो नल से ही लेना पड़ेगा और उसके लिए फी देना पड़ेगा, तब क्या होगा, सुविधा है, नल आपके घर तक आएगा, उसको लॉक रहेगा, उससे अच्छा नदी में चले जाओ, नहीं नदी में मत जाओ, हमारे से ही लेना होगा पानी को, हमारे से ही लेना होगा पानी, आपको खरीदी करना पड़ेगा। यानी कि जहां प्रॉफिट है उसमें से, एक कोई निष्णात व्यक्ति बोल रहे थे 25 साल के बाद पानी के लिए युद्ध होगा और पानी पेट्रोल से ही महंगा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि पैसा पैसा पैसा। अगर पाश्चात्य देशों में अगर आप कुछ कह दिया, कुछ आपने सुझाव दी, वो कहेंगे कभी कभी आई कांट बाय दिस, मैं स्वीकार नहीं करता, इसके लिए क्या कहेंगे, आई कांट बाय दिस, आई कांट बाय यानी कि सब कुछ खरीदी करो बेचो, खरीदी करो बेचो, इस दृष्टिकोण से ही बात करना। तो ऐसे समाज में क्या होगा कि यज्ञ नहीं रहेगा बल्कि शोषण रहेगा। इसलिए समानता कभी नहीं आनी चाहिए, और समानता आने से जो सूक्ष्म गुण हमारे प्रगति के लिए अनुकूल है वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राधानंद महाराज जी कहते हैं कि जब अगर आप ज्यादा कुछ बनाते हो खेती में, जब डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम हो जाता है, तो कब क्या होगा, भाव घट जाएगा। तो भाव घटना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करो, अगर आपने बहुत कुछ, उदाहरण देते एक बार, वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा अमेरिका में, तो जो कैपिटलिस्ट वो लोग आकर किसानों को कहने लगे, देखो आप इसको बेचोगे तो कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा, आप इसको जलाओ हम इससे ज्यादा पैसा देंगे। उन्होंने किसानों को जो घेव बनाया था उसको जलाने के लिए लगाया, और जलाने से क्या हो गया, डिमांड आ गया, बहुत डिमांड आ गया, और डिमांड आने से रेट को बढ़ाया दिया गया, तो लोगों को खरीदी करना पड़ा। यह है इकोनॉमिक सिस्टम। और एक उदाहरण दे रहे थे, जिस समय युद्ध चल रहा था अमेरिका में, आंतरिक युद्ध चल रहा था, वियतनाम में जाना चाहिए कि नहीं, हमारे लोगों को भेजना चाहिए कि नहीं, तो कह रहे थे कि कई देशों में वहां का ही सरकार क्या करती है, वो बाहर से ड्रग मंगाती है, मतलब प्रचुर मात्रा में ड्रग मंगाती है, किसके लिए, ताकि, और ड्रग बेचने के लिए कॉलेजेस में विद्यार्थियों के लिए उनके ही एजेंट्स होते हैं, ताकि ड्रग लेने से क्या होगा, जो सोचने की वृत्ति जो सरकार गलत कर रहा है उसके प्रति प्रतिकार करने की जो इच्छा है वो नाश हो जाता है. यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम हैप्पी विथ माई ड्रग्स. यानी कि सरकारी अपने ही प्रजाओं को नाश कराती है ताकि लोग कुछ प्रतिकार नहीं करना चाहिए. तो सोचो ऐसे युग में हम फंस गए हैं कि जहां जो हमें बचाना चाहिए वो ऐसे नियमों को बनाते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं. हम सबको श्रीमंत बनना है, सबको धनिक बनना है, सबको पैसे वाला बनना है, सबके पास गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. और एक उदाहरण दे देंगे हम, आजकल जो अलग अलग मशीन आए हुए कंप्यूटर, आईफोन, आईपैड, रिमोट कंट्रोल, इससे क्या होगा, इसमें जो मनुष्य मनुष्य का संबंध है वो खत्म हो जाएगा. जहां सेल्फ सफिशिएंसी है वहां इंटरडिपेंडेंस नहीं है. जहां इंटरडिपेंडेंस नहीं हो कि आप अपने घर पे अकेले रहोगे, फोन करो आपका खाना आ जाएगा, बेल दबाओ आपको जो भी चाहिए वो मनोरंजन आ जाएगा, या इंटरनेट में कुछ आपको जानकारी चाहिए वो सब जानकारी मिल जाएगी. यानी कि जहां इतना सारा इंफॉर्मेशन है किसी व्यक्ति से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पैसा दे दो सब कुछ मिल जाएगा, उसे क्या होगा, जो इंटरडिपेंडेंस है परस्पर निर्भर होना, ये जब नाश हो जाता है तो व्यक्ति मशीन के समान बन जाता है. आई डोंट नीड एनीबडी, मैं किसी को नहीं चाहता. और ऐसे लोग जो सकारात्मक संवेदनशील गुणों को जो उपासना नहीं कर सकते, इसलिए आपने देखा होगा जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, सेल्फ मेड, वो कहते हैं मैं तो अपने आप खड़ा हो गया मेरे पैर पे, खुद के पैर पे, समाज ने मुझे मदद नहीं किया. ऐसे जब वो बड़े बन जाते हैं वो कभी भक्त नहीं बनते, बहुत कम लोग ऐसे भक्त बनते हैं. वो प्रामाणिक होते हैं, काफी प्रामाणिक होते हैं, लेकिन निर्भर रहने की जो कला में शून्य होने के कारण वो समझ नहीं पाते कि अरे भगवान के प्रति निर्भर होना चाहिए. जिनको बचपन से माता पिता के प्रति निर्भर है, समाज के प्रति निर्भर है, उनके प्रति भरोसा रखते हैं, कृतज्ञता रखते हैं, उनको भगवान के प्रति भरोसा रखना आसान बन जाता है क्योंकि पहले से अनुभव है ऐसा. माता पिता ने धोखा नहीं दिया है, बंधुओं ने धोखा नहीं दिया, समाज ने धोखा नहीं दिया है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति निर्भर हो सकता है. लेकिन जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने खुद के पैर पर खड़े हो गए, समाज ने उनको लगता है कि बहुत सारा धोखा दिया है, वो किसी के प्रति विश्वास नहीं रखते, भगवान के प्रति क्या रखेंगे, उनको लगता है सब हमें धोखा देंगे. इसलिए ऋण है ये इतना महत्वपूर्ण है. तो तीन ऋण पांडु ने कहा मैं तीन ऋणों से मुक्त हूं, मैंने कर लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ऋण है पितृ ऋण, उसको मैंने चुकाया नहीं है. इसको चुकाए न होने के कारण मुझे पुत्र की आवश्यकता बहुत ही है. देखो सोचने की वृत्ति देखो, सोचने की तरीका देखो कि इसलिए पुत्र महत्वपूर्ण बन जाता है. किसके लिए, ऋण चुकाने के लिए. पितृ होंगे ना, आजकल पितृ पता रहे वो तो राख हो गया, उसको क्या है ऋण, उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, आगे आने वालों के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व नहीं. आज का मनुष्य क्या करता है, हमारे मदन गोपाल प्रभु अपने सेमिनार में बता रहे थे, इनहेरिट्स फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स. आज का जो सुविधाएं है वो कहां से लाता है, अपने पूर्वजों से लाता है. हमारे पूर्वजों ने खेती की, पेड़ लगाया, कनाल्स बनाए, पुण्य कर्म किए, उनके पुण्य के कर्म के कारण हमारे पास बहुत सारे सुविधा है, उसको हम भोगते हैं. और साथ साथ वो कह रहे थे वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड स्टील फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन. जो आगे आने वाले जो जनरेशन है उनका भी हरण कर लेते हैं तो उनकी हालत कैसी होगी आगे जाकर, सोच लो. तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, इसमें एक प्रणाली है, एक सिस्टम है. जब हम कहते हैं कि ये सब बकवास है, मैं बहुत ही वैज्ञानिक हूं, इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं सिस्टम को ही तोड़ना चाहता हूं. और जब सिस्टम को तोड़ते हैं उसका परिणाम है हमें झेलना पड़ता है. इसे रशिया में एक सी था, समुद्र नहीं, छोटा सा सी था, और वहां का जो पानी है उन्होंने सोचा रहे इस पानी को क्या करेंगे, हम कॉटन ग्रो करने के लिए डाइवर्ट करेंगे। उन्होंने कॉटन ग्रो करने के लिए उसको डाइवर्ट कर दिया, 50 साल पहले की बात है, ये आप इसको पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया, और उस समय जो सोवियत यूनियन था, अभी वो अलग देश है, तो उसका पानी डाइवर्ट करने के कारण इतना कॉटन ग्रो किया, इतना कॉटन ग्रो किया, इतना कॉटन ग्रो किया, अब पूछो ही मत, सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो करने वाला वो कंट्री बन गया। लेकिन वो पानी डाइवर्ट करने के कारण समुद्र में पानी जाना बंद हो गया, और आज वो समुद्र सूखा हुआ है, और सूखने के कारण जो दूसरे पल्ली पार जो सारे किसानों का जो खेती है वो सूखने के कारण जब हवा आती है वो यहां का सारा जो रेते उठा उठाकर हवा के द्वारा वो कवर करती जा रही है जो सुपिक जमीन के ऊपर, और साथ साथ उसमें जो केमिकल जो वेस्ट डाला गया था वो भी उड़ते हुए लोगों को नाश कर रहा है। अगर फिर से उस समुद्र को या उस सी को भरना हो तो और 50 साल लगेंगे। यानी कि सोचो, जब मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा जो ग्रॉस सिस्टम को कुछ कर लेता है, मैन्यूवर करता है, मैनिपुलेट करता है, उससे केवल नाश ही हो जाता है। तो पांडु पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जो है ये कोई ऐसे ही कहानी नहीं है। अरे क्या फालतू है कहानी, इसके पीछे कितना विज्ञान है, कितना ज्ञान है, कितना साइंस है, कितनी भावना है, इसे हमें जानना चाहिए। तो क्या गलती है, बल्कि ऐसा करना ही चाहिए। तो पांडु कुंती से प्रार्थना करता है, क्योंकि उनको शाप मिल गया था, उनके हाथ से गलती होगी, राजा थे, राजा होने के कारण हम इसकी चर्चा कर रहे थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ सुविधाएं होती है। वो शिकार करने के लिए गए थे, और शिकार करते करते जो ऋषि अपने पत्नी के साथ गलत समय समागम करना चाहते थे, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं कर सकते हो, तो उनको प्राणी योनि प्राप्त करने की विद्या थी। देखो, गलत काम के लिए उपयोग कर दिया, क्योंकि प्राणी योनि में, एक्चुअली प्राणी योनि में भी समय होता है, ऐसा नहीं कि वो कभी भी कर सकते हैं। तो फिर भी उन्होंने प्राणी योनि को प्राप्त कर लिया, और वहां अपने पत्नी से जो उसका आनंद ले रहे थे, सुख ले रहे थे, उस समय पांडु क्या करते हैं, उसको बाण चलाकर उस दोनों जो पशु थे उनको मार देते हैं। मारते समय वो करते, आपने क्या कर दिया, हम लोग ये भोग कर रहे थे, आपने देखा नहीं, अगर हम जानवर भी है आपका अधिकार है मारना, लेकिन जब ऐसे मृति क्रीड़ा कर रहे थे उस समय आप अपने ऊपर आक्रमण कर रहे हो, मैं आपको शाप दूंगा। कि शाप क्या है, कि आप जब अपने पत्नी के साथ ऐसा करने का प्रयास करोगे आप काल के गल में चले जाओगे, ऐसे उनको शाप मिल गया। तुरंत पांडव सब कुछ त्याग करके सन्यासी बनना चाहते हैं, लेकिन कुंती और माद्री उनको कहती कि नहीं नहीं, सन्यासी मत बनो, आप वानप्रस्थ बन जाओ। तो वानप्रस्थ बनने के लिए वो जबरदस्ती करती है, तो जो सप्तशृंग पर्वत के पहां आ जाते हो, सब राज्य त्याग करके धृतराष्ट्र की इच्छा पूरी हो जाती है, अंधा बैठ जाता है राज्य कारोबार करने के लिए, और ये आ जाते हैं, और काफी साल ऐसे तपस्या करते हैं, पूरे भगवान के सामने संलग्न हो जाते हैं। साथ साथ ये उनको एक हमेशा चिंता होती है, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथ से गलती हो गई, मेरा सब कुछ मैं खो गया। तो अंत में जब ऐसा समय आ गया, तब कुंती से वो बोलते कि आपको पुत्र प्राप्त करना चाहिए, और कुंती कहती है असंभव है। क्यों, वो कहती है मैं कैसे दूसरे पुरुष के पास जा सकती हूं, आपके लिए, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, ये सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है, मैं इसको सोच भी नहीं सकती हूं। और कुंती एक कहानी सुनाती है पांडु को, कहती है कि एक विशुताश्व नाम के एक राजा थे, और उनकी पत्नी थी भद्रा, और विशुताश्व राजा भोग के कारण क्षय रोग को प्राप्त हो गए, और उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ, और ऐसे उनकी मृत्यु हो गई। और विशिताश्व की पत्नी जो भद्रा उनसे पुत्र चाहती थी और उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत सत्य पतिव्रता थी और बहुत प्रार्थना करने के बाद देवताओं के आदेश से विशिताश्व शव के रूप में आकाश से बोलते उसको। अभी ऐसे भी विचित्र कथाएं महाभारत में है, ये हमारे ऊपर है, मानने से हमें ही लाभ है, नहीं मानने से हम लोग जो आधुनिक समाज जो गलत रास्ते पे ले जा रहा है, जैसे हमने काफी उदाहरण से बताया। तो इसने क्या किया, आशुताश्व के शरीर से जो शव है उसके कृपा से सात पुत्र को प्राप्त कर लिया। तो कुंती कहती है आशुताश्व तो एक राजा थे, आप उनसे बलिष्ठ हो, शक्तिशाली हो, योग सिद्धि आपको हुई है, आप बिना समागम से मेरे द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मैं आपके द्वारा ही पुत्र प्राप्त करूंगी, बल्कि बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। तब पांडु महाराज कहते देखो कुंती कि धर्म बहुत सूक्ष्म है, आप धर्म की बात कर रहे हो लेकिन पति होने के नाते आपके लिए मैं स्वामी हूं, और आपके स्वामी होने के नाते मेरा सुनना आपका कर्तव्य है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहती हो, ये शास्त्र अपधर्म जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे इसमें अनुमति दी गई है, आप इसलिए बिना कोई डर से पुत्र प्राप्त कर लो ताकि हम हमारे ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तब कुंती दुर्वास मुनि का जो वर है उसके बारे में अपने पति से चर्चा करती है, और पांडु महाराज और भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि देवतागण मनुष्यों से ऊंचे है, देवतागण मनुष्यों में कुछ अच्छे कारण के लिए संपर्क करने से न तो देवतागण दूषित होते हैं न तो मनुष्य दूषित होते हैं। तो पांडु ने कहा फिर अगर आपको ऐसी शक्ति है तो कृपा करके किसको बुलाओ, धर्म को बुलाओ, क्योंकि अधर्म से प्रजा का पालन नहीं होता, केवल धर्म से ही प्रजा का पालन होता है, इसलिए धर्म को बुलाओ। देखो यानी कि वहां भी राजा थे लेकिन यही राज करने की इच्छा किसके लिए थी, धर्म का पालन होना चाहिए। राज्य का विस्तार क्यों करते थे, राज्य का विस्तार करने का भी उद्देश्य अगर आप पढ़ोगे मनु संहिता में महाभारत में, राज्य विस्तार करने का उद्देश्य यही होता था कि मैं मेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मेरे राज्य को बढ़ाने से क्या होगा, जो मेरे राज्य में रहने वाले जो गाय है उनको चरने के लिए, उनको घास खाने के लिए जगह मिल जाएगी, और उसे क्या होगा, अच्छा घी मिलेगा, उसे दूध मिलेगा, वो दूध और घी लेकर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर सकते हैं, उनके लिए सुविधाएं मिल जाएगी। यानी कि राज्य भी बढ़ाना है केवल धर्म को बढ़ाने के लिए, इस दृष्टिकोण से राज्य क्या करते थे। जब युधिष्ठिर महाराज उनको जब जुआ में सब कुछ हार गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सब कुछ हार गए और हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे थे, उस समय उनके मन में एक ही खेद था, एक ही चिंता थी, ऐसा नहीं कि मैं राज्य खो गया, क्योंकि उनके यहां 60,000 विद्यार्थीगण स्नातक विद्यार्थीगण भोजन लेते थे, निवास करते थे, उनके लिए उन्होंने सुविधाएं बना के रखी थी ताकि वो विद्या अर्जन कर ले, एजुकेशन वॉज फ्री, एजुकेशन को भेजा नहीं जाता था, इसलिए शास्त्र में कहा है, व्यासदेव जी महाभारत में कहते हैं कि तीन वस्तु है, एक कलयुग का लक्षण है, विद्या को बेचना, खाना बेचना और अपने शरीर के रूप को बेचना, जो मॉडल्स होते हैं खड़े हो जाते हैं पैसा लेते हैं, जो अपने रूप को बेचता है, आई एम ब्यूटिफुल एंड यू बाय मी, तो ये एक पाप है। और विद्या को बेचना कि मैं आपको विद्या का वैल्यू क्या है, विद्या पैसे से खरीदने किया जा सकता लेकिन कलयुग में व्यासदेव जी के देश को बेचा जाएगा। और तीसरा है भोजन को बेचना, आजकल तो पानी प्राइवेटाइज हो रहा है, आगे जाकर हवा भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। अगर आप हवा भी लोगे ना, उसके लिए जितना बार व्यायाम योगासन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना बार आप श्वास अंदर लोगे उतना पैसा लेना पड़ेगा, जितना बाहर छोड़ोगे उतना भी देना पड़ेगा। बोथ वेज आर यूटिलाइजिंग। इसलिए प्राणायाम से क्या हो जाएगा, काफी देर तक रोक के रख सकते हो ताकि आपका जो काउंटिंग रहेगा वो कम रहेगा। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां जो क्या चर्चा कर रहे थे, हाँ, युधिष्ठिर महाराज 7000 विद्यार्थी उनके पास थे। जब उनका राज्य उनके हाथ से निकल गया, उनके मन में यही विचार था कि मैं इन विद्यार्थियों को खिला नहीं सकता हूं, इन विद्यार्थियों को पिला नहीं सकता हूं, इन विद्यार्थियों का देखभाल नहीं कर सकता हूं, इनको पढ़ाना चाहिए, इनको खिलाना चाहिए। यानी कि राजा विद्यार्थियों को फ्री, गाय की सेवा, ब्राह्मणों को प्रयोजन देना, किसके लिए, शास्त्र पढ़ने दो, और कला को पोषण देना। कलाकारों को सैलरी नहीं होता था, वो नहीं सोचते थे मैं इतना पैसा लूंगा एक्टिंग करने के लिए, नहीं, वो रेट डिसाइड नहीं करते थे, राजा उनको देते थे, ले तेरे लिए मैं इतना पैसा दे रहा हूं, ये ले पैसा और सबके मनोरंजन के लिए कला दिखाओ। तुमको कोई नेता नहीं बनना है, एक्टर्स और एक्ट्रेस को नेता नहीं बनना है, क्योंकि वो लोग नाटक ही करते हैं। वो शास्त्र के हर एक श्लोक को कंठस्थ कर सकते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्टर है, एक्टर तो बहुत अच्छा से करेंगे लेकिन ये आना चाहिए एक्टर ही है। इसलिए उनको क्या करते थे, उनको गांव के बाहर रखते थे, क्योंकि ज्यादा इन्फ्लुएंस मत करो, केवल स्टेज के ऊपर, आपका काम स्टेज पे हो गया फिर गांव के बाहर चले जाओ, हम आपका देखभाल करेंगे। देखो कितना वैज्ञानिक संस्कृति थी। आजकल क्या है, पूरे एक्टर्स और एक्ट्रेस देश को चलाते हैं, वो लोग देश को चलाते। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे थे, उसीलिए उनको दौम्य ऋषि ने कहा सूर्य की उपासना करो और आपको अक्षय पात्र देंगे। अक्षय पात्र खुद के लिए नहीं था, अक्षय पात्र किसके लिए था, ताकि इन विद्यार्थियों को खिलाने के लिए। और ऐसे ब्राह्मण विद्यार्थीगण 12 साल तक युधिष्ठिर महाराज से पोषित थे। केवल उनका अज्ञातवास आ गया तब उनको पीछे रुकना पड़ा एक साल के लिए। यानी कि ये संस्कृति उस समय थी। इसलिए पांडु महाराज जब धर्म को मांगते हैं कुंती को कि धर्म को बुलाओ, क्योंकि धर्म से ही प्रजा की रक्षा होती है। विभीषण जब रावण कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं, रावण ने क्या मांगा, वही जो आज हम मांगते हैं, मृत्यु को मुझे जीतना है। लोग लगे हुए हैं किसके लिए, मृत्यु को जीतने के लिए। एक जगह में मृत्यु जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरे जगह में मृत्यु ज्यादा होना चाहिए ऐसा वेपन्स भी बना रहे और ऐसा खाना भी बना रहे आजकल, कि ताकि मृत्यु बहुत जल्दी हो जाए। देखो एक जगह में ऐसा दवाई बना रहे थी कि हमको मृत्यु को जीत लेना चाहिए, ये संभव नहीं है। अगर हम अमर बन जाएंगे जहां मरना चाहिए, फिर आत्महत्या की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाएंगे यहां रहना। तो विभीषण रावण ने कहा कि मेरे किसी से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कुंभकर्ण ने कहा मुझे सोना है। फिर विभीषण ने क्या कहा, विभीषण ने कहा कि हे धर्म, हे ब्रह्मदेव, मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरे हाथ से धर्म का कभी लोप नहीं होना चाहिए, और धर्म का लोप उसी समय भी पालन करना चाहिए जब मेरे जीवन में विपत्ति आ जाती है। विपत्तियां आने पर भी धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म का नाश होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। देखो क्या सोचते विभीषण, विपत्ति आने पर भी धर्म लोप नहीं होना चाहिए, जब विपत्ति आती है और अगर धर्म लोप हो जाता है, धर्म लोप होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, इसलिए धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविकता धर्मराज को प्राप्त करने के लिए पांडु ने कहा कि यमराज को बुलाओ। अगर आजकल ऐसा वरदान मिलता, सौभाग्य ऐसा मिलता ही नहीं है, तो माता पिता क्या मांगते, हा? क्या मांगते हो? मांगते कोई नटी आने दो मेरे घर पे जो नग्न डांस करती है, या मुझे घर पे कोई क्रिकेटर आने दो, या मेरे घर में जो सबसे चालाक जो राजकारणी है सबको लूटता है अच्छे अच्छे बोलकर, ऐसा आने दो। सोचो भगवान ने ऐसे जो वर है आजकल देते नहीं है, क्योंकि जानते हैं लोग ठीक से नहीं मांगेंगे। पांडु के पास ऐसा अवसर मिल गया तो उन्होंने किसको मांगा? धर्म को बुलाया। धर्म के द्वारा युधिष्ठिर महाराज की प्राप्ति हो गई, युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज का जन्म होते ही गांधारी को इसको समाचार मिल गया। अभी गांधारी धर्मशीलता है, यही व्यासदेव की महानता। व्यासदेव जी क्या करते हैं? व्यासदेव महाभारत में अच्छे गुण और दोष को भी दिखाते हैं, वो दोष को छिपाते नहीं। कितने भी महान क्यों न हो वो दिखा दे, देखो यहां उनका दोष प्रकट हो गया। जैसे गांधारी को समाचार मिल गया कि युधिष्ठिर महाराज यानी कि कुंती ने पहला गर्भ दे दिया है, उसका जन्म हो गया, वो जान गया अभी मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा। इस ईर्ष्या के कारण इसको सहन नहीं कर सकी, उन्होंने क्या कर दिया? उस द्वेष के कारण अपने पेट के ऊपर जोर जोर से आघात करने लगे और उससे पिंड बाहर निकला, जैसा पत्थर के समान मांस बाहर निकला। और उधर से आ गए दुर्योधन महाशय, यानी कि देखो और संस्कार, मां का जो द्वेष था, मां की जो ईर्ष्या था, उसके कारण उन्होंने ऐसे जीव को आकर्षित कर दिया, वो दुर्योधन बन गया। धर्म के पूरा विरुद्ध, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, पूरा विरुद्ध आ गए। युधिष्ठिर महाराज धर्म के मूर्ति मानते और दुर्योधन किसके मूर्ति मानते? कली के मूर्ति मानते। बताया जाता है महाभारत में वो कली का प्रतिनिधित्व करते थे, कली थे, स्वयं कली। दुर्योधन मरे हैं, लेकिन जैसे भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, वैसे ये सारे जो कैरेक्टर्स है, शकुनी, डुप्लीसिटस बिहेवियर, कली, झगड़ा करना, ये दोनों मारे गए युधिष्ठिर महाराज और भीम के द्वारा, लेकिन अपने भाव अवतार के रूप में सबके हृदय में निवास है अभी भी, उनका भी राज्य चल रहा है। दे आर देर, कभी कभी बाहर निकलते, कभी कभी नहीं, बार बार बाहर निकलते। तो युधिष्ठिर महाराज आ गए। युधिष्ठिर महाराज आने के बाद काफी दिन के बाद, एक साल के बाद, फिर से पांडु महाराज ने कहा कुंती को, देखो धर्म की स्थापना करनी हो उसके लिए क्षात्र तेज चाहिए, जहां सत्व गुण है, जहां धर्म है, धर्म को बचाने के लिए क्षात्र तेज भी चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान देने से लोग सुधरते नहीं है, ज्ञान के साथ क्या चाहिए? दंड भी चाहिए। अगर दंड नहीं दिया गया तो लोग सुधरते नहीं है। राज्य अगर धर्म की स्थापना करने के लिए, हम देखते हैं भारत के इतिहास में जितने भी महान राजा हो गए वो स्वतंत्र राजा नहीं थे, उनको हमेशा किसी न किसी का उपदेश, ज्ञान और गाइडेंस मिला करता था। चंद्रगुप्त महाराज, उनके समय में वैदिक संस्कृति कलयुग में प्रगति कर रही थी, उनके मार्गदर्शक कौन थे? चाणक्य पंडित। हमें चाणक्य पंडित का जो चित्र ऐसा दिया जाता है कि वो धूर्त थे, कपटी थे, क्रूर थे, ऐसा नहीं है, वो निस्वार्थ थे, उन्होंने कभी तनख्वाह नहीं लिया। और क्रूरता किसके लिए किया? जहां सामने वाले लोगों को डराने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। उनके अर्थशास्त्र में जो नियम उन्होंने बताई है, अगर उसका हम लोग पालन करेंगे तो अभी भी सुभिक्षा हो सकती है। शिवाजी महाराज महान कैसे बन गए? हम अपने स्वयं के शक्ति से नहीं, स्वयं की शक्ति थी लेकिन उसको सही मार्गदर्शन देने वाले थे, इसलिए जो सामने लगा है भक्ति शक्ति है कि नहीं। तुकाराम महाराज जी थे, तुकाराम महाराज को लोग इधर कोई इम्प्रैक्टिकल सेंड, मतलब सब अपना धंधा भी बंद हो गया, कुछ नहीं हो उनके हाथ से, लेकिन अगर नहीं वो नहीं होते, शिवाजी महाराज के मन में एक बार इच्छा आ गई थी वैराग्य का जीवन जीना चाहिए, तो तुकाराम महाराज अगर अपरिपक्व ब्रह्मचारी होते आज अच्छा हो गया, छोड़ दे सब सत्यानाश है, ये गृहस्थ जीवन ही बेकार है, चल मेरे साथ ले करताल बजा, और ऐसे लोगों को बनाते जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, तेरा धर्म एक क्षत्रिय धर्म, ये ब्रह्मचारियों को जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि सबको लेकर ब्रह्मचारी बनाते जाओ। तो समाज में सब लोगों की आवश्यकता होती है, अगर तुकाराम महाराज स्वयं के भक्ति में तल्लीन थे लेकिन ये पूरा ज्ञान था कि इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्या आवश्यक है, उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्षत्रिय धर्म ही अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो उनको दो दो ऐसे दिग्गज प्राप्त हो गए, रामदास स्वामी और तुकाराम महाराज। वो जो इंग्लिश बुक में लिखा है, ये तुकाराम महाराज भी नहीं थे और रामदास स्वामी भी नहीं थे शिवाजी मार्गदर्शन के देने के लिए। देखो ये अमेरिका में बैठ के हैमबर्गर और बियर पीकर ये लिखता है कि इनका ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं था, और इसको हमारे इंटेलेक्चुअल लोग कहते दे शुड अलाउ इट, उसको बांटना चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इस प्रकार से उनको ऐसा मार्गदर्शन मिला, इसलिए राज्य कारोबार ठीक से कर पाए। और दक्षिण भारत में जो विजयनगर का जो साम्राज्य था, 250-300 साल तक उन्होंने राज्य किया। कैसे राज्य किया, अगर आप उनको राज लांछन देखोगे, वो क्या है, वराहदेव भूमि को ऊपर लेकर आ रहे हैं। उस समय भारत भूमि में अधर्म इतना बढ़ गया था, धर्म के नाम से अत्याचार हो रहा था, बाहर के लोग आकर आक्रमण कर रहे थे, वैदिक संस्कृति को नाश कर रहे थे। उस समय सब लोग ने सोचा तत्वज्ञान को अलग रख दिया, क्योंकि तत्वज्ञान कब काम करेगा, जब तुम्हारा ये राज्य हो। अगर तुम वैष्णव सिद्धांत को पालन कर रहे हो, ज्ञान मार्ग को पालन कर रहे हो, कर्म मार्ग को पालन कर रहे हो, लेकिन इनकी संस्कृति क्या है, इनकी संस्कृति समान है, गाय की रक्षा करेंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को प्रचोदन देंगे, हम असली ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, उनको प्रचोदन देंगे। लेकिन जो बाहर का जो धर्म आया था, गाय का नाश कर रहा था, मूर्तियों को नाश कर रहा था, तो इसलिए उनको एकत्रित आना बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय क्या हो गया, उन्होंने एक साधारण जो सैनिक, जो देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र देव, वो मारे गए मलिक काफिर के द्वारा। फिर उसके राज्य में एक छोटा सा जो सैनिक था, दो भाई थे, वो शफड़ लगा मतलब, हाँ धनगर जाति के थे, देखो धनगर जाति के थे। इनको विद्यारण्य नाम के जो स्वामी थे, अक्षोभ्य तीर्थ और वेदांत देशिका, ये वहां के आचार्य थे। उनके मन में तीव्र वेदना थी, अगर कोई राजा नहीं रहेगा ठीक से, ये तब क्या होगा, ये हम आध्यात्मिक मार्ग को प्रचार नहीं कर पाएंगे। वो मुसलमान बन गया था, उसको फिर से वापिस दीक्षा देकर उसको सनातन धर्म में दीक्षा दिया, उसको कमांडर बनाया और उसके राज्य को स्थापन कर दिया। और बाद में जो 250 साल तक उनके मार्गदर्शन में चलते रहे, जब उनका मार्गदर्शन देना बंद हो गया, तब क्या हो गया, उनका राज्य का पतन हो गया, उनका राज्य निकल गया। लेकिन 250 साल तक क्षत्रिय तेज और जो ब्राह्मण तेज के कारण इसका जो कॉम्बिनेशन है वो चलता रहा। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह में कहते हैं, जब तक हम राजा को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भावना इतना स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेशन है, अपने पास लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। जहां अधिकार मिल जाएगा तो स्वाभाविक है, आराम से बन जाएगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हमें प्रयास करना ही है इस ज्ञान को वितरण करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा देखो कि धर्मराज है और हम देखते हैं इतिहास में धर्मराज हमेशा धर्मराज होने के नाते हर समय वो सात्विक गुणों की बात किया करते थे। वो हमारे गांधी के समान थे लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी को भीम और अर्जुन जैसे लोग नहीं मिले, मिले दूसरे ही, उनका नाम नहीं लेंगे हम। तो देखो पांडु महाराज कितने बुद्धिमान है, वानप्रस्थ का जीवन जी रहे लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्या चाहिए, ऐसे शक्तिशाली चाहिए। तो भीम की उत्पत्ति हो गई धर्म को रक्षा करने के लिए। फिर एक साल के बाद उन्होंने कड़ी तपस्या की क्योंकि यहां अब जो आने वाले थे जिनको चाहते थे वो केवल इंद्र संभूत न होकर स्वयं भगवान नारायण के पार्षद नर थे, नर नारायण ऋषि स्वयं कृष्ण और अर्जुन होने के नाते काफी देर तक पांडु महाराज ने तपस्या की और तपस्या से इंद्र जब संतुष्ट हो गए, इंद्र के द्वारा भगवान ने नर को भेज दिया और जब अर्जुन का जन्म हो गया, एक दायना हाथ और एक बाया दोनों जगह में, जैसे होता ना बॉडीगार्ड एक ही जगह में नहीं होता, अगर कोई राजा निकल गया दोनों साइड में बॉडीगार्ड होते, तो अर्जुन और भीम अपने क्षात्र शक्ति से जो सात्विक शक्ति जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको बचा रहे थे। तो अर्जुन का जन्म हो गया, अर्जुन का जन्म होते ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म हो गया इसलिए उनका नाम फाल्गुनी रखा गया, उनमें ऐसा तेज था। तब ऐसी आकाशवाणी हो गई कि ये जो अर्जुन है वो क्या क्या नहीं करेंगे, वो सब के बारे में चर्चा की जाती है वहां और उत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद फिर से धर्मराज पांडु महाराज पुत्र की अभिलाषा करते हैं, तब कुंती कहती है अब अति हो गया, आपका लोप बढ़ता जा रहा है, अब ये धर्म का लोप हो जाएगा, आपको नहीं मांगना चाहिए, हमें तीन पुत्र बस है, अगर इससे ज्यादा मांगो तो शास्त्र में ऐसे स्त्री को स्वैरिणी कहा गया है, गणिका कहा गया है, तो इसलिए मैं इसे सहमत नहीं हूं। तो पांडु महाराज क्षमा मांगते हैं, हाँ मैं जानता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस समय क्या हो गया, तीन पुत्र हो गए, तो माद्री के मन में स्वाभाविक जो स्त्री या पुरुष कोई हो, अगर आपके पड़ोस आपके समान जो आपका कॉन्टेम्पररी है उसके पास सुविधाएं आ जाती है और आपके पास नहीं आएगा तो थोड़ा सा द्वेष आ जाता है। तो माद्री एकांत में पांडु महाराज से कहती है कि देखो कि कुंती मेरे समान ही है, बल्कि एक दृष्टि से मैं उससे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि माद्री बहुत सुंदर थी लेकिन वो बड़ी होने के नाते मैं उसकी सेवा कर रही हूं, लेकिन मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र न होने के कारण मेरे मन में बहुत बड़ा खेद है, क्या आप कुंती द्वारा कह सकते हो कि मैं भी किसी देवताओं को आह्वान करके मेरे गर्भ से मैं कुछ पुत्र को प्राप्त कर लो। तो पांडु महाराज ने कहा अरे मैं यही सुनना चाहता था, मुझे डर लग गया कि अगर मैं ऐसा आपको बोल दूं आपको गुस्सा हो जाएगा, मैं क्यों उससे मदद लो, इसलिए कलयुग में एक ही शादी है बस क्योंकि इसको हमारे पुरंदर दास एक कन्नड़ में भजन में कहते हैं, एक बार वो किसी मंदिर में गए थे, वो मंदिर के पुजारी को दो पत्नियां थी, तो उन्होंने देखा इतना कष्ट है उसको, तो उधर एक भजन लिखा उन्होंने। ये सब हमारे जो हरिदास संत थे तुकाराम महाराज इस वातावरण को देख कर लिखते थे भजन, तो उन्होंने लिख दिया हिंडती नन्न प्राण हिंडती, हिंडती यानी की पत्नी, हिंडती यानी की स्क्वीज करना, जो कन्नड़ जानते हो उसका मजा ले सकते। तो जैसे तुकाराम महाराज ने भी एक पद्य लिखा, एक किसी मराठी व्यक्ति ने किसी कन्नड़ स्त्री से शादी कर लिया, मालूम है भजन ऐसा है, तो उसमें क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, भगवान से प्रार्थना करते मेरी हालत ऐसी नहीं होना चाहिए कि पत्नी की भाषा पति नहीं जानता, पति की भाषा पत्नी नहीं जानती है, ऐसे मेरा आपके साथ में नहीं होना चाहिए, मुझे आपकी भाषा जानना चाहिए और आपको मेरी भाषा जानना चाहिए। वो कहते हैं कि पत्नी को बुलाया, पत्नी ने अपने पति को बुलाया इल्ली बा ऐसा है भजन है हमने देखा रे, तो इल्ली बा यानी कि इधर आ, वो अपने पति को बुला रही थी,
तो पति को लगा कि मुझे बाप कह रही हो, भागने लगा। तो कह रहा महाराज लिखते ऐसा, मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहां जो माद्री थी वो भगवान अपने कुंती से कहते आप उनसे मेरे लिए मांग लो। तो पांडव ने कहा रहे मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि आप इससे संतुष्ट हो जाओगी, कुंती निश्चित मेरे बातों को मान लेगी। तो जब कुंती को कहा गया, कुंती तुरंत तैयार हो गई, उसने एक मंत्र दिया। तो माद्री सोचने लगी, देखो वो क्या राजकुमारी थी, राजा की पुत्री थी, तो डिप्लोमेट थी। उसने सोचा एक बाण से दो पक्षी मारना है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अश्विनी कुमार को बुलाया, तो दो पुत्र हो गए। तो दो पुत्र होते ही उसको और इच्छा हो गई। तब कुंती ने कहा नहीं, इसने मेरे को धोखा दिया, मैं जानती ही नहीं थी कि एक मंत्र से दो देवताओं को बुला सकती हूं। तो बस हो गया, पांच बहुत हो गए। तो कुंती भी प्रसन्न हो गई, माद्री भी प्रसन्न हो गई, और युधिष्ठिर अपने पांडु महाराज भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से पांच पुत्रों को प्राप्त करके अगर हम हमारे बुद्धि से सोचेंगे धर्म का लोप हो गया। हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा की है, धर्म लोप नहीं हुआ, बल्कि ऐसे पुत्रों के कारण अगर युधिष्ठ अगर धर्म अगर पांडु महाराज सोचते नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना संतान के मर जाएंगे, यानी कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता। सोचो आज हम लोग बैठकर कुछ भी हो जाए, लोग स्तुति करते होंगे, कर्ण की स्तुति करते होंगे, दुर्योधन की स्तुति करते होंगे, लेकिन बीच बीच में पांडवों की स्तुति उनके मन में से भी आ जाता है। और भक्तों के तो कहना ही क्या है कि पांडवों का जो इतिहास है वो इतना महान है, उसके बारे में हम हमेशा के लिए चर्चा करते रहेंगे। महाभारत कभी नाश नहीं होगा। महाभारत हम लोग सिंगापुर गए थे, वहां एक जापनीज लोगों ने एक नाटक प्रस्तुत कर रहे थे और विषय कहता रामायण के ऊपर। इंडोनेशिया में वहां एक उनका खुद का लिखा हुआ उसी भाषा में महाभारत के ऊपर तात्पर्य है। लोग महाभारत और रामायण के प्रति लीला भी करते हैं, और वहां की जो जनसंख्या है वो मोहम्मद लोगों की जनसंख्या है, फिर भी संस्कृति क्या है, महाभारत और रामायण है, उसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे चरित्र क्योंकि पांडवों का है, भगवान कृष्ण का है, स्वाभाविक रूप से वो हमें आकर्षित है। इसलिए जो पांडव महाराज ने जो किया है, उन्होंने क्या कर दिया, वो करने से केवल अपने कुल का उद्धार नहीं किया, बल्कि अभी भी हम सबका उद्धार कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगीरथ महाराज को गंगा लानी थी, गंगा को प्रकट करना था, किसके लिए, अपने कुल के उद्धार करने के लिए, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था अरे मैं गंगा लाऊंगा फिर कलयुग के लोग भी जाकर स्नान करेंगे। उनके मन में एक ही था कि मेरे पूर्वजों की इच्छा पूरी करनी, हमारे पूर्वज लोग क्या हो गए, शपग्रस्त है, शपिस्त है, तो उनका उद्धार करना, इसलिए उन्होंने तपस्या की, गंगा को स्वर्ग से लेकर आया। देखो एक अच्छे कर्म करने के कारण केवल उनके परिवार के लिए उसका लाभ कितना है, अभी भी जो भी गंगा के तट पर जाता है उसको लाभ हो जाता है। और कहां तक गंगा नहीं आती है, बॉम्बे में भी गंगा है, बाण गंगा है, वो भी गंगा ही है, उधर भी लाभ हो जाता है। यानी कि अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा धार्मिक कर्म करने से उसका लाभ क्या हम जानते नहीं होंगे, बल्कि उसका परिणाम यह है जो सत्ययुग की घटना गंगा को लाना, अभी भी उसका हम फायदा उठा रहे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा, लोग डरते हैं, वैज्ञानिक लोग भी डर रहे हैं कि गंगा लुप्त हो जाएगी, गंगा सूख जाएगी, क्योंकि जो ओजोन लेयर क्या हो रहा है वो पिघलता जा रहा है। यानी कि ये कंट्रीब्यूशन है हमारे आधुनिक समाज का। और भगीरथ महाराज का कंट्रीब्यूशन क्या था, गंगा को लाया, और आज भी उसका हम फायदा उठा रहे हैं। वैसे पांडु महाराज ने जो भयाकारी दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से गलती नहीं है, भयाकारी दृष्टि से हम और आप गलती कह सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम देखो, उसका परिणाम क्या है, हम सबको लाभ हो रहा है। अर्जुन को कौन पसंद नहीं करता, सचिन तेंदुलकर भी पसंद करता है, इसलिए अपने बच्चे को अर्जुन नाम रखा है। जानते हो? जानते कि नहीं? हम इसलिए जानते क्योंकि अर्जुन इसमें है, अर्जुन का नाम रखा है। यह है अर्जुन, हरे कृष्णा, भीम, नकुल और सहदेव की महिमा। हरे कृष्णा। हम शाम को द्रौपदी और उसके पांच पति की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी महाभारत में अगर कोई है तो यही कथा है, इसके हम चर्चा शाम को करेंगे 4 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।